जनाब सुहेल दाइन साहब का मजमून, सिंध के दर्द का इलाज, 4 फरवरी 2022 को रोजनामा 92 न्यूज में शाया हुआ आपके पेश खिदमत है। जब सर का दर्द नाकाबिले बर्दाश्त हो गया, बीनाई कमजोर हो गई, कान बजने लगे और सांस थूकनी की तरह चलने लगी, तो बच्चे बाबा जी को डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने मरीज का मुआयना किया और सारी रिपोर्टें देखकर नहायत दुखी अंदाज में बोला, बाबा जी के सर में ट्यूमर है, अगर फौरन ऑपरेशन ना हुआ तो उनके बचने का 10% इम्कान है, बस सबूतें दीगर हर गुजरता दिन इन्हें मौत के करीब ले जाएगा। बच्चों ने फौरन बाबा जी को उठाया और होम्योपैथिक डॉक्टर के पास ले गए। उसने सारी अलामतें सुनी और फिर पुरएतमाद लहजे में बोला, मेरा ख्याल है हम इस ट्यूमर को दवाओं से गायब कर सकते हैं, आप जर्मनी से दवाएं मंगवा लें। बच्चों ने नाना जी को फिर उठाया और नीले हकीम के पास ले गए। हकीम ने मरीज की नस पकड़ी, पुतलियां उठाकर आंखें देखी, अलामतें सुनी और फिर अपनी कमजोर गर्दन हिलाकर बोला, मेरा ख्याल है बाबा जी को कब्ज है, अगर ये रफा हो जाए तो सारे मर्ज दूर हो जाएंगे, अगर इजाज़त दे तो जमाल गोटा खिल दे दूं। बच्चों ने बाबा जी को फिर उठाया और सन्यासी के पास ले गए। सन्यासी ने मरीज की जिल्द का रंग देखा, मुंह खुलवाकर मुलाहजा किया, उंगली से रीढ़ की हड्डी पर दस्तक दी और फिर बुकराती लहजे में बोला, जनाबे वाला अगर आप ये जोंक लगवा लें तो सारे मसला ख़त्म हो जाएगा। जहाँ इन्हें दुआओं के सहारे छोड़ दिया। रात को बाबा जी ने चीख मारी और उछल कूद शुरू कर दी, सारे घर में भगदड़ मच गई, सब अपने अपने लिहाफ छोड़कर बाबा जी की गिर जमा हो गए। बाबा जी ने ताली बजाई और ऐलान किया कि मेरे सर का दर्द खत्म हो चुका है, अब नज़र भी साफ आ रहा है और सुनाई भी ठीक दे रहा है, सांस भी हमवार और रवा है, मैं बिल्कुल सेहतमंद हूँ। बच्चों ने हैरत से पूछा, आखिर ये कैसे हुआ? बाबा जी ने हंसकर कहा, मैंने लेटे लेटे अपने कॉलर पर हाथ फेरा तो वो मुझे ज़रा तंग सा महसूस हुआ, बस मैंने कॉलर का बटन खोल दिया और सुखी हो गया। मेरा ख्याल है आइंदा मुझे 15 के बजाय 16 साइज का कॉलर पहनना चाहिए। जब मैं सिंध की सूरत हाल देखता हूँ तो मुझे बाबा जी याद आ जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही हाल सिंध के मसाइल का है। ये सूबा साल साल से अपने दर्द से कर्रा रहा है, उसकी बीना इतनी कमज़ोर हो चुकी है, सामने पड़ी चीज़ तक नज़र नहीं आ रही। उसके हुक्मरान उसे डॉक्टर की माने ने जो एक्सरे, ईसीजी, सोनोग्राफी और मुख्तलिफ टेस्ट करके नए नए तौजीहात और तशरीहात बयान कर रहे हैं। उसकी तमाम सियासी पार्टियाँ जो इस सूबे की स्टेक होल्डर्स हैं, वो सब होम्योपैथिक हकीम और सन्यासी की तरह अपनी अपनी बुखारियत झाड़ रहे हैं। इक्तसादियात हो, मुआशरती ज़िंदगी, लसानी और फ़िका वाराना फैक्टर, उसका सर भी कई बरसों से दर्द कर रहा है। अंदेशों और ख़तरात का शोर इतना बढ़ चुका है कि अब बंसरी की आवाज़ भी ट्रेन की छक छक महसूस होती है। अब इस सूबे की हालत देखें, कराची से कश्मीर तक का जायज़ा ले लें, रास्ते में आपको हैदराबाद, नवाबशाह, सक्कर मिलेंगे, दूसरे रूट से जाएं तो दादू और लाड़काना जैसे शहरों की दुहाई सुनते जाएं, एक तरफ और निकल जाएं तो मीरपुर खास और थर तक की आहो बका सुन लें, ठट्टा से बदीन तक का मातम देख लें। लेकिन हुक्मरान है कि उसकी तशखीस के लिए नए नए नुस्खे बता रहे हैं। PTI, NQM, GDA जैसी जमातें हैं तो नीले हकीम, होम्योपैथिक या सन्यासी बाबा की तरह मौलिज बनकर दाद रसाई में नए नए नुस्खे लिख रहे हैं, कोई ऑपरेशन का मशवरा दे रहा है, कोई महंगी दवाएं और जमाल गोटा देने और कोई जोंक लगवाने का मशवरा दे रहा है। जी हाँ, यही कराची था, कभी अच्छे वक्तों में ये आगे बढ़ रहा था, हालात ने उसे कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। 74 साल में जिसे देखो कराची पर यलगार कर रहा है, लेकिन उसके जख्मों पर मरहम रखने के लिए कोई तैयार नहीं, उसके दुख का मदावा किसी को नजर नहीं आ रहा। हम कोई नया शहर बसाने की तो दूर की बात, हैदराबाद समेत जो दूसरे छोटे बड़े शहर मौजूद हैं, कम अज कम उन्हें बेहतर कर लेते। हर वक्त वफाकी हुकूमत हो या सूबाई हुकूमत, खजाना खाली होने का रोना रोते रहते हैं। नौबत यहाँ तक पहुँच गई है कि मुलाजमीन की तनख्वाहें देने के लिए पैसे नहीं रहे, कोई तरक्याती काम नहीं हो रहे, हर एक को सिर्फ अपनी तख्ती लगाने की फिक्र लगी हुई है। वफाकी हुकूमत डींगे मारते थक नहीं रही, कारोबारी तबका परेशान है क्योंकि टैक्सेशन निज़ाम के दफातर थानों की तरह ऑपरेट कर रहे हैं, अपनी जेबें गर्म कर रहे हैं। यकीन जानिए हुकूमत के पल्ले 50% भी नहीं आ रहा, आम आदमी बस रो रहा है। रेलवे और PIA जैसे इदारे सफ़ेद हाथी की तरह पूरी मीशत को रौंद रहे हैं। यूरिया के लिए किसानों को लाइन में लगना पड़ रहा है और उसके नर्ख आसमान से बातें कर रहे हैं। स्टॉक एक्सचेंज हिचकोले खा रहा है, रुपया आखिरी सांस ले रहा है। रेवेन्यू के जो आदादोशुमार हुकूमत बता रही है उसके सबब लोगों की चीखें निकल रही हैं। सिंध की सूरत हाल देखें, तालीम और सेहत का बुरा हाल है। इस सूबे के छोटे बड़े शहरों में आप घूम फिर कर देख लें, वो खस्ता हाली है, इस तरह धूल उड़ रही है, लोग इसी तरह मफलूकुल हाल दिखाई दे रहे हैं। फिर पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची का भी हाल मुलाहजा कीजिए, कोई उससे ओन करने को तैयार नहीं, एक दूसरे पर तनकीद के नश्तर चल रहे हैं, एक हाहाकार मची हुई है, धरने हो रहे हैं, वादे हो रहे हैं, पंजा आजमाई हो रही है। सिंध हुकूमत इख्तियारात पर अपना तसल्लुत जमाने के लिए सब कुछ कर गुजरने के लिए तैयार है, बाकी तमाम हकीम और सन्यासी बाबा अपनी अपनी बोलियां बोल रहे हैं। इस सूबे का मसला मेरिट है, हुकुमरानों के इरादे और नीयत है। जो दूसरी सियासी जमातें अपोजिशन में बैठी हैं, ये अपना अपना चूरन बेच रही हैं। डॉक्टर हकीम और सन्यासी हमारे सर दर्द, बीनाई, समात और सांस का इलाज नहीं कर सकते, हमें अपने कॉलर खुद ही खोलना पड़ेंगे, क्योंकि जो कुछ हो रहा है और जो कुछ हो चुका है ये हमारा इलाज नहीं कर सकते। ये नए नए ऑपरेशन तजवीज करेंगे, कड़वी कसीली गोलियां खिलाएंगे, जमाल गोटा देंगे या फिर जोंके लगा कर ये तवक्को करेंगे कि लोग उनके लिए तालियां बजाएं, इन्हें अपना लीडर माने। अगर हम अपनी रविश नहीं बदलेंगे तो ये भी अपना तरीका इलाज नहीं बदलेंगे और हम रोते रहेंगे। हुकूमत के एक साबिक वजीर खजाना का ख्याल है कि वो कराची को इसका इख्तियार दिलाएंगे। कराची को बेख्तियार चलाने का वक्त चला गया। कोई इंसाफ से पूछे कि 3.5 साल से अपने कराची के लिए क्या किया? जिस ग्रीन लाइन का तस्करा आप कर रहे हैं, ये तो 80% नवाज शरीफ के दौर में मुकम्मल हो चुका था। जिन मसाइल की निशानदेही की जा रही है, ये तो पहले भी सबको मालूम थे, जारी है।